सम्यक् दृष्टि बनाम हस्तदृष्टि। 28 अगस्त रविवार को जैन महावीर भवन आदर्श नगर में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए जनाचार्य श्री ज्ञानचंद जी महाराज साहब ने फरमाया कि सम्यक् दृष्टि का अर्थ है हस्तदृष्टि। जिस तरह हंस पानी मिले दूध में से दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है, इसी तरह सम्यक् दृष्टि जीव संसार में जो श्रेष्ठ है, अमृत है, अच्छे सच्चे सद्गुण है, उसे ग्रहण कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। सब्जी बाजार में 50 तरह की सब्जियां होती है, उसमें से जो आपको चाहिए वो लिया और आगे बढ़े। इसी प्रकार संसार में अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के लोगों से भरा है, आप अच्छा लीजिए और आगे बढ़िए। यूं तो जैनी पानी छानकर पीते हैं, वायु कायिक हिंसा से बचने के लिए मुख पर कपड़ा लगाते हैं और दूसरी तरफ घर घर में कत्ल खाने चलाए जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कौन से कत्ल खाने? वो है एबार्शन के, गर्भपात के। हमें अतिरिक्त संतान नहीं चाहिए, इतनी सी बात के पीछे अपनी ही संतान का गला घोटा जा रहा है। एक साइलेंट स्कीम मौन क्रंदन के नाम से फिल्म बनी है, जिसमें कहते हैं गर्भपात होते दिखाया गया है। एक पतली सी कैंची गर्भ में जाती है, वो ऑटोमेटिक फिट है, यानी कि बच्चा कैंची देख रहा है, घबरा रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है, गर्भ की मामूली सी जगह में भी छिपने का प्रयास कर रहा है। किंतु कैंची की कंडीशन यह है कि बच्चा जिधर मुड़ेगा कैंची भी उधर ही मुड़ जाएगी और उसकी बॉडी को टच करके छोटे छोटे पीस करके बाहर निकालती है। ऐसी नरिशंस हत्या करवा रहे हैं बच्चे के ही माँ बाप। जाग जाए, जो हो गया वो हो गया, अब नहीं। ऐसे पापी को तो किसी धर्म में शांति नहीं मिलने वाली। अगर कहीं गर्भपात हो रहा है तो उसे बचाइए और जिंदगी में कोई भी एक बच्चे का गर्भपात रोककर उस बच्चे का लालन पालन करे तो आपका मानव जीवन सफल हो जाएगा। उपस्थित सैकड़ों भाई बहनों ने इसका संकल्प लिया। द्वारिका के विनाश के कारण 3 बताए हैं, सुर्की दिवायन मूल्य विनाशे भविष्य, शराब, अग्नि और द्वेपन ऋषि। आज जैन समाज का प्रभाव पूरे विश्व में है। जैन फूड में जमीकन तक नहीं है तो दूसरी तरफ जैनी खुलेआम शराब, अंडा, मांस का सेवन कर रहे हैं। जैनी ही जैन धर्म को बदनाम करने में लगे हैं। एक में शहर में संवत्सरी के दिन एक होटल में एक जैन श्रीमंत को शराब पीते देखकर नवयुवक मेरे पास आए और बोले, अमुक जैनी शराब पी रहा है। आज से 45 वर्ष करीब पहले अजमेर में डॉक्टर राय बहादुर सिंह जी ने आचार्य श्री नानालाल जी महाराज साहब को कहा कि मैं आपके किसी जैन समाज के घर में गया तो वहां उनके लड़के का तेज पेट दर्द हो रहा था। खोज करने पर पता चला कि वो बकरे के ब्रेन का मांस खाकर आया है, जो मांसाहार के अभ्यस्त लोगों को भी जल्दी से नहीं पचता। जैन साधुओं को व्यापक अभियान चलाने की आवश्यकता है। इसी तरह संतों का सम्मान करना सीख जाइए। पानी और अग्नि विद्युत से दूर रहिए, अन्यथा ये कभी भी जान ले सकते हैं। गत सुकुमार जब महाराज बनने की बात करते हैं तो श्री कृष्ण उनसे बहुत प्यार करके समझाते हैं, लेकिन उनका वैराग्य पक्का था। श्री कृष्ण वासुदेव को भी पता था मेरा भाई महाराज बनेगा, यह बात देवता जन्म से पहले कह चुके थे, फिर भी समझाया नहीं माने तो एक दिन का राज्याभिषेक करके संन्यास के मार्ग को प्रशस्त किया। ऐसे त्रिखंडाधिपति के भाई गजसु कुमार को एक रात्रि में भी मार दिया गया, भयंकर वेदना दी। इसे कहते हैं कर्म। इतने बड़े राजा के भाई को भी कोई बचा नहीं पाया। अतः भाग्य ठीक करिए, भाग्य की टंकी में तप त्याग दान पुण्य का तेल मिलाइए, तभी वो चलेगी। मेडिकल साइंस में भी दवा का पर्चा लिखने से पहले डॉक्टर RS लिखकर अपने भगवान को याद करता है, तो इससे आप सभी को भी प्रेरणा लेने की जरूरत है। पंजाब के ओसवाल लोगों को भाव बड़े कहते हैं, क्योंकि इनका खान पान रहन सहन स्वच्छ एवं सदाचार पूर्ण रहा है। इस भाव बड़े की स्थिति को बनाए रखने के लिए अपनी संतान को धर्म मार्ग पर लाने की जरूरत है। सत्संग बुद्धि को पवित्र बना देती है और असंभव लगने वाले काम को संभव कर देती है। एक नगर सेठ का व्यापार बहुत ही लंबा चौड़ा था। वह बड़ा उदार और न्याय नीति संपन्न था। कई नगरों में उनकी आड़त चलती थी। उनकी पीढ़ी पुरानी थी, सो अच्छी जमी हुई थी। उसी नगर में एक और संपन्न सेठ रहता था। वह भी बड़ा व्यापारी था, परंतु उसका हृदय बहुत ही काला था। व्यापार में झूठ सच करने में और झूठे लेख लिखने में दक्ष था। उसके हृदय में दया का तो अंश ही नहीं था। उसे नगर सेठ की वृद्धि से बहुत जलन होती थी। उसकी हरदम इच्छा रहती थी कि नगर सेठ की इज्जत धूल में मिल जाए, व्यापार में घाटा हो जाए, दिवाला निकल जाए, परंतु सेठ इतने दयालु, सरल, प्रेमी और कुशल थे कि प्रकट रूप में वह उनकी कुछ भी हानि नहीं कर सकता था। एक समय उनकी पीढ़ी पर एक साथ 5 लाख की हुंडी आई, जिनके रुपए 2 दिन में ही चुकाने थे। सेठ के लिए बड़ी बात नहीं थी, परंतु इस समय अधिकांश रुपए व्यापार में रुके पड़े थे और इतने कम समय में इतनी रकम जमा करना सरल नहीं था। आभूषण आदि बेचने में इज्जत जाने का भय था, इसलिए नगर सेठ विचार में पड़ गए। उनकी दृष्टि अपने प्रतिद्वंदी सेठ पर गई। उन्होंने सोचा, वह मुझे रुपए दे सकता है, परंतु वह बहुत ही जालसाज है, कपटी है, कुटलिक करने में अग्रगण्य है, परंतु क्या करूं, किसी दूसरे के पास इतने नकद रुपए नहीं मिल सकते हैं, मुझे उसी के पास जाना होगा, किसी तरह अपनी इज्जत तो रखनी पड़ेगी, पुण्य प्रबल होगा तो वह मेरा कुछ भी नहीं कर सकेगा। यह विचार करके नगर सेठ रामेश्वर के घर पहुंचे। रामेश्वर ने नगर सेठ का सत्कार किया। नगर सेठ ने अपने आने का प्रयोजन बताते हुए कहा, मुझे अभी 5 लाख रुपए की आवश्यकता है, मैं आपको 1 सप्ताह में ब्याज समेत रुपए लौटा दूंगा। रामेश्वर ने देखा कि अच्छा दांव हाथ लग रहा है, उसने हंसते हुए कहा, आप नगर सेठ मेरे घर पधारे, मेरा आंगन पवित्र हो गया, आप जैसे महान सेठ से ब्याज लेना नहीं चाहता हूँ। नगर सेठ तो भाई, आपको रुपए देने की इच्छा नहीं है। रामेश्वर ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए हंसते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप पहली बार मेरे घर पधारे हैं, खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा, आप बिना ब्याज के रुपए ले जाइए, पर एक शर्त है। शर्त के पीछे उसके मन में कुटिल भावना व आंखों में क्रूरता नृत्य कर रही थी। नगर सेठ ने पूछा, शर्त क्या है? शर्त तो यही है कि यदि आप मुद्दत समय पर रुपए नहीं दे सके तो आपको अपने कलेजे का आधा सेर मांस देना होगा। बोलो, आपको यह शर्त मंजूर हो तो अभी रुपए गिनवा देता हूँ। यह बात सुनकर नगर सेठ कुछ विचार में पड़ गए। इसने तो मुझे मारने का उपाय सोचा है, परंतु यह बेचारा क्या जानता है कि मैं 7 दिन में 5 लाख या 15 लाख रुपयों की व्यवस्था कर सकता हूँ। पर यह शर्त अच्छी नहीं है, पर कहते हैं, जाको राखे साया, ताको मार सके नहीं कोया। मुद्दत के पहले ही इसके रुपए चुका दूंगा और ब्याज भी नहीं लगेगा। रामेश्वर सेठ ने फिर पूछा, तो आपका क्या विचार है? नगर सेठ ने कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। रामेश्वर सेठ ने कहा, इस बात की लिखा पढ़ी भी हो जाना चाहिए। नगर सेठ विवश थे, उन्होंने अपनी इज्जत की रक्षा के लिए ऐसे भयंकर लेख पर हस्ताक्षर भी कर दिए और रुपए ले गए। दिन बीत रहे थे, नगर सेठ की तबीयत खराब हो गई। 7 दिन के भीतर वे रुपयों का प्रबंध नहीं कर सके, वे बड़े चिंतित हो गए। फिर भी ज्यों त्यों करके 8वें दिन उन्होंने ब्याज समेत रुपए रामेश्वर के यहाँ भेजे, परंतु उसने यह कहकर रुपए लौटा दिए कि मुद्दत पूरी हो गई है, मुझे रुपए नहीं चाहिए, मैं शर्त के अनुसार कलेजे का मांस ही लूंगा। नगर सेठ भयभीत हो गए, उनकी तबीयत और बिगड़ गई। इधर रामेश्वर सेठ शर्त पूरी करवाने के लिए जल्दी मचा रहा था। बेचारे नगर सेठ किन कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे। रामेश्वर सेठ ने न्यायाधिकारी के सामने अपनी शिकायत रखी। न्यायाधिकारी ने नगर सेठ को बुलाया। उन्हें विवश होकर रुग्णावस्था में न्यायाधिकारी के समक्ष उपस्थित होना पड़ा। न्यायाधिकारी नगर सेठ की उदारता और सच्चारिता से परिचित थे। उन्हें रुग्ण स्थिति में उपस्थित हुए देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने नगर सेठ से पूछा, क्या आपने ऐसी शर्त की थी? हाँ, की थी, परंतु मैंने 8वें दिन इनके रुपए ब्याज समेत भेज दिए थे, पर इन्होंने नहीं लिए। रामेश्वर ने गुस्से से कहा, मुद्दत जो बीत गई थी, मैं रुपए कैसे लेता? न्यायाधिकारी ने नगर सेठ से कहा, आपने ऐसी शर्त पर रुपए ही क्यों लिए? अपनी इज्जत बचाने के लिए ये किसी प्रकार से रुपए देने को तैयार ही न थे, और मैं समझता था कि 7 दिन में रुपयों का प्रबंध हो जाएगा, पर थोड़ा सा बीमार हो गया था, फिर भी 8वें दिन इनके रुपए पहुंचा दिए। न्यायाधिकारी ने रामेश्वर सेठ को समझाने का प्रयत्न किया,
परंतु रामेश्वर सेठ ने कहा, आप न्यायसाना पर विराजमान हैं, मैं न्याय पेन आया हूं, समाजादा करें नहीं, आप मुझे न्याय दीजिए। न्यायाधिकारी रामेश्वर की कुटिल भावना जान गए। उन्हें काय बार लेख पत्र पढ़ा, जिसेस की नगर सेठ का बकवा हो सके, ऐसी कोई राह अनेक समाज में नहीं आए। रामेश्वर सेठ जल्दी कर रहा था, अंत में न्यायाधिकारी ने कहा, यह न्याय योजना बार है, रामेश्वर सेठ जल्दी मत करो, कल इस बात का न्याय राज्य सभा में होगा, फिर USA नगर सेठ से कहा, आप शांति से जे और अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दीजिए। दानम सेठ वाहम से खेल गए। न्यायाधिकारी ने यह समस्या राज्य के समान रखी। राजा रामेश्वर सेठ की दस्तादा को समाज गए। उन्हें न्यायाधिकारी को राज्य सभा में न्याय प्रकरण को प्रस्तुत करने को कहा। दसेर दिन सेठ राज्य सभा में आए। न्यायाधिकारी ने न्याय प्रकरण प्रस्तुत करके कहा, राजन, नगर सेठ ने अथवम दिन रुपए बेहे तब दुगारी है दिन करह दे अठानी डेरा कोई खास डेरा नहीं है। मैं कहा हम कि रामेश्वर को रुपए लेना कहिए। कायम रामेश्वर सेठ तुम हम रुपए लेना है? रामेश्वर सेठ राजन, मुझे रुपए नहीं कहिए। Mame kahata hum ki lekapatra ki sarda ka aksarasa palana hona kahie. Usamem seda dina ke batera hai arna kukane ki bada hai. Athavem dina ki bada hai hai nahim. Rajan yayadisa ramesvara setha thika kahat hayam. Ye rupe nahim lasakat hayam. Kyanki mudata bida gai hai. Inaki sarda ka aksarasa, palana hona kahie. Fira raja ne nagara setha ki ora dekakara ka hasra stivaria. Tumhem apain vakana ka palana karain ke lai tayara ho jana kahie. Ijata bakan ke lai jaba apain atani karaka sarda ko manjara ki ataba isa sarda ka palana hona bita vyavahara ki ijata ki raksa karana hai hai. Kalosra stivaria. Tayara ho jau. Ramesvara raja ki bada se bara prasana ho gaya. Usain yora se jayanata ki adharmavatara ki jaya ho. Raja ne gambarata se kaha santa ho srasti nagara setha suki muma se atana hai bola sake jaisi rajajnya. Prastuta hum. Rajan. Raja ne churi mangavai. Ramesvara ne hatha mem churi li ora vaha jais hai nagara srasti ki chadi para use kalain ke lai tayara wata raja ne karakakara kaha thaharo. Suno. Tumara sarda ka aksarata palana hona kahie. Na, Ramesvara setha ne kaha ji rajan. Tisrasti suno sarda mem kalahe ke adha sara mamsa ke lena ka hai vidana hai na. Ham rajan. Basa tumhem kalahe ko hai katan ka adikara hai. Anya anga ko nahim. Dusari bada, tumhem adha sara mamsa lena hai. Vaha na da tila bara kama na tila bara jayata. Tisari bada tamhari sarda mem mamsalina ki hai bada liki hai, rakta bahana ki nahim. Isali eka bumda bi rakta nahim bahana kahie. Yadi inamem se eka bi bada viparita hogi to tumhem kara danda dia jaga. Abatuma arama se kalahe ka mamsa lasakat ho. Ramesvara ke prana suka gai. Raja ki bada sunakara. Vaha jaham ka taham thithaka gaya. Raja ne garajakara kaha dara kayam karati ho. Kalo apana karyakaro. Ramesvara setha ne hatha jorakara raja se kaha rajan. Mujay kalahe ka mamsa nahim kahie, mujay rupe hai dalava digi. Raja ne us damtate hu kaha aba rupe nahim mila sakat hayam. Tamhari avadi jo bida gai hai. Kalo, rajajnya ka palana karo. Yadi rajajnya ki avahelana karogi to dasa laka rupe ke danda barain hunj. Ramesvara setha ki amkam mem amsu bara I. Vaha raja ke karanam mem latata wa bola rajan. Mara aparata wa. Mujay kasama karo. Raja ne krota se kaha dusta. Aba tumhem kasama mangate luja nahimati. Kisi sajana purusa ko tuma marana kahat ho. Nagaras rasti ne hatha jarate hu kaha rajan. Inhem kasama kara digi. Raja ne kaha srastavara. Apamana hai rahie. Raja ka yaha kartavya hai ki sajanam ki raksa kara ora dustam ko dandada. Akira mem raja ne ramesvara setha ko desa tayaga ka dandadia. Svartha vesa kisi ko samapta karain vala svayam samapta ho jata hai. Ursia karake kisi ko dana karain ki bajaya, apain ko age barain vala hai safala ho sakata hai. Ajakala kampiotara ka jamana hai usamem katain bi programa bara lo. Usamem eka batana isa hoda hai ki us dabit hai saba safa ho jate hayam. Isi taraha jindagi bara ke papam ko dona hai da dharma ki sarana mema jay. Saba safa ho jange. Jisa prakara ki dixalena matra se papi adami tira jata hai. Sadhu bain bina kalyana nahim hai. Maneva bava mila hai, ayusya paramita hai. Kaba kya ho jay.
Pata nahi hai atah diksha lekar bhav bhav ke paap kaatkar param shanti ko paya ja sakta hai. Dharm prabhavna. Aaj paryushan parv ki chhata hi nirali thi. Acharya Bhagwan ki prabal prerana se vishal hall upar niche bahar tak khachakhach bhara hai. बहुत आश्चर्य वाली बात है कि सबके सब लोगों ने सामायिक ड्रेस पहनकर साधना में भाग लिया। हर दिन शताधिक भाई बहन तो एक साथ पांच पांच सामायिक कर रहे हैं। शाम को प्रतिक्रमण में भी लोग अच्छी संख्या में आने लगे हैं। 2400 घंटे भाई बहनों में अलग अलग नवकार जाप चल रहा है। यही नहीं भारी मात्रा में तपस्या चल रही है। 50 भाई बहनों की अट्ठाया चल रही है। कईयों की लंबी तपस्याएं भी है। बाहर से भी भाई बहन आकर तप कर रहे हैं। नररत्न श्री प्रवीण जी जैन लुधियाना के आज 5 और उनकी धर्मपत्नी महिला रत्न श्री सुमन जी जैन के 11 है। इसी तरह वीरपिता श्री अमरचंद जी मेहता के भी आज 5 की तपस्या है। स्थानीय लोग तो भारी मात्रा में तप जप कर ही रहे हैं। गुरुदेव के मार्मिक उपदेश से अच्छे कार्य करने का लोगों में जुनून छाया हुआ है। दर्शनार्थीगण निरंतर आकर गुरु दर्शन प्रवचन श्रवण का लाभ ले रहे हैं। श्री अरिहंत मार्गी जैन महासंघ सदा जयवंत हो।